से ये कहा गया है जल नहीं रहा है, मुझसे कहा गया है कि देश में इधर जो कुछ राजनैतिक उथल पुथल हो रही है उसके बारे में भी कुछ कहूं। कल का दिन मैंने इसके लिए रख छोड़ा था, कल मैं इसके बारे में कहूंगा। आप लोगों में शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और दूसरे नागरिक भी हैं। आप सबके जिनके ध्यान में रहे उनसे निवेदन है कि चार शब्द आप ध्यान में रखें। पहला शब्द है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता से मेरा मतलब भारतीयता। भारत का छोटा सा प्रतिरूप हर गांव होगा। विनोबा गांधी की तो इच्छा थी कि संसार का, दुनिया का ही एक छोटा सा नमूना हर गांव होगा। छोटे से दायरे में पूरा जगत, विनोबा ने ग्राम स्वराज ग्राम दान एक तरफ कहा और दूसरी तरफ जय जगत। गांधी ने कहा था कि मेरा जो समाज मेरे स्वप्न का होगा उसमें छोटे छोटे वृत्त होंगे लेकिन उन सारे वृत्तों का केंद्र एक होगा, केंद्र एक और उसमें से बहुत से वृत्त, जैसे पानी में पत्थर फेंकने के बाद जैसे वृत्त बनते हैं ऐसे वृत्त बनते जाएंगे, छोटा गांव होगा और दुनिया होगी, दुनिया का प्रतिरूप होगा हर गांव। विनोबा ने उपमा दी थी कि एक एक गांव राम दाने के लड्डू का एक एक दाना नहीं होगा, लड्डू के टुकड़े नहीं होंगे, छोटा लड्डू गांव और बहुत बड़ा लड्डू जगत। इसलिए मैंने दो रात तक इसका विवेचन किया। कारण यह है कि कम्युनिस्टों ने और मार्क्सिस्टों ने, मार्क्स के अनुयायियों ने दुनिया की कल्पना एक कम्यून के रूप में की। कम्यून अलग चीज है जिसमें लोग आते हैं रहने के लिए, काम के लिए इकट्ठा होते हैं। इसराइल में किबुत्स हैं, रूस में और चीन में कम्यून है, लेकिन हमारा जो विचार है यानी जो हमारी कल्पना है वो कम्यून की नहीं है, किबुत्स की नहीं है, परिवार की है, फैमिली ऑफ मैन, मानवीय परिवार सारी दुनिया बने। विज्ञान का ये तकाजा है कि दुनिया या तो अब एक परिवार बनेगी या फिर मनुष्य जाति नहीं रहेगी, ये दो ही विकल्प हमारे सामने हैं। इसलिए दो रोज तक मैंने भारतीयता का विवेचन किया कि क्या हो, भारतवर्ष कम से कम एक परिवार हो, और अगर भारतवर्ष एक परिवार हो जाता है तो सारा संसार एक परिवार बनने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो। आज ये जो परिवार होगा इसकी आर्थिक संयोजन इसका किस प्रकार का होगा, ये विचार आज हमको करना है। ये विचार बहुत बड़ा है, एक भाषण में तो मुश्किल है सब रख देना, लेकिन जितना मैं रख सकूंगा मैं रखूंगा। इसे अर्थ रचना कहते हैं। तो ये चार शब्द ध्यान में रखें, एक राष्ट्रीयता, दूसरा शब्द उसके बाद का है समाजवाद, राष्ट्रीयता समाजवाद, तीसरा शब्द है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सेक्युलरिज्म इहलोक का विचार, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया का विचार। अब इसको कल मैं लेने वाला हूं, लेकिन आपकी समझने के लिए थोड़े मैं कह दूं। जैसे बाजार है तो दुकान में हम ये नहीं देखते कि ये किसकी दुकान है, हिंदू की है, मुसलमान की है, ईसाई की है, ये विचार नहीं करते। स्टेशन में स्टेशन मास्टर है, हमको बस में चढ़ना है, ट्रेन में चढ़ना है, हम ये नहीं सोचते कि बस किसकी है और ट्रेन का ड्राइवर कौन है। इसे अहिंसा कहते हैं, सेक्युलरिज्म। हम एक दूसरे के साथ इस दुनिया में मनुष्य के नाते रहे। कल मैंने थोड़ा विवेचन इसका किया कि पड़ोसियत ही सेक्युलरिज्म है, मनुष्य मनुष्य का पड़ोसी बने और हर पड़ोसी हमारा भाई बने, पड़ोसी एक दूसरे के भाई बने। तो कल जिस पारिवारिकता की बात मैंने कही वही असल में सेक्युलरिज्म है। और इसके बाद लोकतंत्र, राष्ट्रीयता समाजवाद सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र। तो आज मैं समाजवाद का विचार लूंगा और कल हम लोकतंत्र का विचार करेंगे। आज जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, क्या वो सही है? क्या वो अर्थशास्त्र कहला सकता है? एक दफा सुंदर वन में शेरों की एक सभा हुई, सारे शेर बैठे आकर। एक शेर का भाषण था, बाहर से आया हुआ था, जैसे हमारे यहां ये इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, इंग्लैंड रिटर्न है, ये अमेरिका रिटर्न है, तो आज इनका भाषण है। ये जो शेर था ये मैनलैंड रिटर्न था, मनुष्यों की सर्कस में से लौटा था। इसलिए सारे शेरों ने सोचा कि इसका भाषण कराएं, मनुष्यों की जगत में इसने क्या क्या देखा। तो एक शेर जो सबसे बड़ा था वो अध्यक्ष बन गया, उसकी पूंछ सबसे लंबी थी तो अपनी पूंछ की गेंडरी बनाकर उस पर बैठ गया। दूसरे शेर बैठे, ये व्याख्याता महोदय आए, उन्होंने कहा कि मैं मनुष्यों के जगत में रहा, सर्कस में कई साल रहा, लेकिन एक बात लगातार सुनता रहा हर आदमी के मुंह से, वो दूसरे के बारे में एक ही बात कहता था कि ये पैसा खाता है, ये पैसा खाता है। वो मिनिस्टर हो चाहे किसी संस्था का सेक्रेटरी हो, बैंक का अध्यक्ष हो, स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, चाहे पुजारी हो विश्वनाथ जी के मंदिर का, हर आदमी बस यही कहता था कि ये पैसा खाता है, पैसा खाता है। अब मैं सर्कस में रहा, मनुष्यों के लिए बारे में मेरा विचार बहुत अच्छा था। मैं समझता था कि मनुष्य इतना बड़ा है, इतना बुद्धिमान है, जो हमको भी सर्कस में नचाता है, तो इसकी अकल तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। तब मैंने सोचा कि जब मनुष्य पैसा खाता है तो पैसा अवश्य ही बड़ी स्वादिष्ट चीज होगी, नहीं तो मनुष्य क्यों खाता। मनुष्य की इतनी अकल है तो वो पैसे जैसी चीज अगर खाता है तो वो स्वादिष्ट होगी, कचौड़ी पकौड़ी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। इसलिए मैं इस ताक में रहा कि इस पैसे को चखूं, इसका जायका मैं देखूं। इस ताक में मैं लगातार रहा। तो एक दिन रिंग मास्टर की जेब में से उसका बटुआ मैंने चुरा लिया। देखा बटुए के भीतर एक चमकीला गोल गोल सोने की चमकीली गोल गोल चकती थी, इसी का नाम पैसा था। देखा बड़ी चमकीली थी, गोल मटोल थी, गोल मटोल चमकीली और देखने में सुंदर। तो मैं मन में आया कि ये बहुत स्वादिष्ट चीज होगी, क्योंकि देखने में जब इतनी सुंदर है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। तो मैंने जीभ पर रखा तो खारी नहीं, खट्टी नहीं, मीठी नहीं, तीखी नहीं, तुर्श नहीं, कसैली नहीं, कोई स्वाद ही नहीं था। ये क्या हो गया, ऐसी चीज तो मनुष्य नहीं खा सकता जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। तब मैंने सोचा कि शायद इसमें चबाने से स्वाद आता होगा, तो मैं चबाने लगा तो दांत टूटने की नौबत आ गई मेरे शेर के भी। सोचा कि ये तो कुछ ऐसा अटपटा मालूम होता है, तब सोचा कि इसको चूसना पड़ता हो, तो चूसने लगा पेपरमिंट की गोली की तरह, कोई स्वाद नहीं। आखिर में सोचा कि निगलना पड़ता हो, तो निगल गया। और शेरो मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन से आज तक पेट में इस कदर दर्द है कि मैं कह नहीं सकता। तब से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मनुष्य में अक्ल बहुत कम है, उसे इस बात की भी तमीज नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पैसे जैसी चीज जो वो खाता है जो शेर भी हजम नहीं कर सकता। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि जंगल के सारे शेरों को मिलकर मनुष्यों को उबारने के लिए एक पंचवार्षिक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य नहीं तो डूब जाए। मित्रों, आज का हमारा जो अर्थशास्त्र है ये पैसे के आसपास घूमता है, पैसा इसका केंद्र बिंदु है। जितने क्रांतिकारी दुनिया में हुए, मार्क्स पैगंबर, मार्क्स सबसे पहला क्रांतिकारी, जो चीज पहले किसी धर्मात्मा ने या किसी देवता ने या किसी अवतार ने नहीं कही वो मार्क्स ने कही। इसलिए मार्क्स को मैं पैगंबर की क्रांति का मानता हूं। मार्क्स से लेकर आज तक जितने क्रांतिकारी हुए उन्होंने एक ही बात कही कि अर्थशास्त्र का केंद्र पैसा नहीं होना चाहिए। पैसे का अर्थशास्त्र अनर्थ शास्त्र है, साइंस ऑफ ह्यूमन मिजरी। ये संपत्ति शास्त्र नहीं है, ये विपत्ति शास्त्र है। कैसे, इसको समझ लीजिए। कीमत और मूल्य दो चीजें हैं। ये शब्द जरा मुश्किल मालूम होते हैं, लेकिन मैं इनको समझाता चला जाऊंगा। कीमत है वो दाम जो बाजार के में हम देते हैं, उसका नाम कीमत। और मूल्य चीज की कदर, चीज का महत्व मूल्य है। हम सांस लेते हैं, हवा के बदले कुछ नहीं देते, पंखे की हवा के बदले देते हैं, लेकिन यो हवा के बदले में हमको कुछ नहीं देना पड़ता। अगर हवा ना हो तो हम जी नहीं सकेंगे, सांस नहीं ले सकेंगे। ये मूल्य है जीवन में। वस्तु के महत्व का नाम मूल्य है। मूल्य को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं आर्थिक क्षेत्र में मूल्य की व्याख्या कर रहा हूं। वस्तु की उपयोगिता का नाम मूल्य है। नमक और शक्कर, शक्कर महंगी होती है, नमक सस्ता होता है, लेकिन श्री कृष्ण ने परीक्षा ली। एक दफा सारी रानियों ने कृष्ण से पूछा कि तुमको मैं कैसे प्यारी हूं, किस तरह हम प्यारे हैं। तो सत्यभामा ने पूछा तो कृष्ण ने कहा कि तुम शकर की तरह प्यारी हो मुझे। और रुक्मिणी ने पूछा तो कहा कि तुम नमक की तरह प्यारी हो। तो रुक्मिणी रूठ गई। तब एक दिन सारी रानियों को भोजन पर बैठाया और सबको शक्कर ही शक्कर दी, नमक किसी को नहीं दिया। तो सब नमक मांगने लगे। नमक जब दिया तब उन्होंने कहा कि अब हर चीज में जायका आया, अब तक तो किसी चीज में कोई स्वाद ही नहीं था, बगैर नमक के हर चीज फीकी है। बाइबल में ईसा पूछता है कि नमक ही फीका हो जाए तो फिर उस किस चीज से उसमें लज्जत लाएंगे। तो लज्जत के लिए नमक चाहिए। नमक सस्ता है, शक्कर महंगी है, लेकिन उपयोगिता नमक की अधिक है। अब आपके ध्यान में आ जाएगा, कीमत एक चीज है और मूल्य दूसरी चीज है। मूल्य है वस्तु की उपयोगिता और कीमत है बाजार भाव। बाजार भाव कृत्रिम होता है। कृत्रिम से मतलब कोई जिसका नियम नहीं, जबरदस्ती जो बन जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। असल में उसका कोई मूल्य नहीं होता। एक राजा ने वरदान मांग लिया था भगवान से कि जिस चीज को छू उसका सोना बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। महल में गया, फाटक में हाथ लगा, सोने का बन गया। भीतर गया भोजन के कमरे में, चौकी पर बैठा, सोने की हो गई थाली, तो सोने की थी ही। खुश हो गया, कहने लगा भगवान की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, जिसे छूता हूं वो सोने का हो जाता है। हाथ में खाने के लिए लड्डू उठाया, सोने का बन गया। अब सोचने लगा कि ये तो अगर सोना हो गया तो खाऊंगा क्या। बगल में पोता बैठा हुआ था, उसको गोद में लेने लगा, वो सोने का बन गया। तो उसने कहा भगवान अपना वरदान लौटा ले। मित्रों, अब जो सबसे बेकार चीज है दुनिया में, यानी जिसको खाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता, जिससे कोई चीज बना नहीं सकते, उसका महत्व तो सबसे अधिक है। कीमत सबसे ज्यादा सोने की है, क्योंकि सबसे निरुपयोगी चीज है। सोना भी निकालने के लिए लोहा चाहिए, और सुनार के यहां के भी औजार लोहे के होते हैं। सोने से कुछ बन नहीं सकता, और सोना अपने में उपयोग की चीज नहीं है। सोना सिर्फ आभूषण अलंकार सोने के हो सकते हैं, तो वो भी तो गुंजा के भी हो सकते हैं और कौड़ी के भी हो सकते हैं और मोर के पंख के भी हो सकते हैं। अब इस अर्थशास्त्र को आप देखिए, आज जो अर्थशास्त्र सारे देश में और दुनिया में चल रहा है, ये कीमत का अर्थशास्त्र है, मूल्य का नहीं। क्रांति मूल्य का अर्थशास्त्र है, कीमत का नहीं। कीमत के अर्थशास्त्र में क्या है, अब आप लोगों में से जो पढ़ते होंगे पढ़ाते होंगे, कीमत के अर्थशास्त्र का सूत्र यह है कि जिसके बदले में अधिक से अधिक मिलता है वो उसका नाम संपत्ति। जिसका प्रतिमूल्य, जिसके बदले में अधिक से अधिक चीज मिले उसका नाम संपत्ति है। अगर आपको किसी चीज के बदले में हाथी मिल गया, लॉटरी का टिकट, हाथी या मोटर मिल गई, तो लॉटरी का टिकट हो गया संपत्ति। ग्वाले का दूध है, अब ये हमारा लड़का कहता है कि यहां का दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये दूध उतना महंगा नहीं है जितना ग्वाले का दूध होता है। ग्वाले के दूध में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा दूध होता है, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है, और मां के दूध की कीमत ही नहीं। तो ग्वाले का दूध संपत्ति है और मां का दूध विपत्ति, कुछ है ही नहीं। अब देखिए इस अर्थशास्त्र को सोचिए आप, लोग अपने को बड़े प्रैक्टिकल वगैरह कहते हैं, बड़े होशियार कहते हैं, उन सबके सामने मैं चीज रख रहा हूं, सोचिए आप, जिसकी कुछ कीमत नहीं उसे संपत्ति नहीं कहेंगे। मां का दूध संपत्ति नहीं। तुलसीदास की रामायण 3 आंगे मिलती है, संपत्ति नहीं है। जासूसी उपन्यास 10 रुपए में मिलता है, संपत्ति है। ये अर्थशास्त्र उल्टा है, औंधा, इसको सीधा करना हो। सीधा करने का मतलब यह है कि जिस चीज की मनुष्य के जीवन के लिए जितनी जरूरत हो वो उतनी सुलभ होनी चाहिए, मिलने में आसान होनी चाहिए। सांस के लिए हवा चाहिए, हवा की कोई कीमत ना हो। पीने के लिए पानी चाहिए, पानी सस्ता हो। खाने के लिए अन्न चाहिए, अन्न सस्ता हो। सस्ता हो से मतलब अन्न पानी हवा कोई कीमत न हो, विनोबा का सूत्र था। इनकी कीमत क्यों न हो, क्योंकि इनकी जरूरत है, इनकी उपयोगिता सबसे अधिक है। सोने की कीमत चाहे जितनी रखी न मिला तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखें ये जितनी चीजें हैं ये सुलभ होनी चाहिए, ये सही अर्थशास्त्र है। अब ये सुलभ कैसे हो, ये सवाल है। एक मेले में मैं गया तो वहां हम सुनते थे कि खाजा वहां का बड़ा मशहूर है उस जगह का। तो मेरे साथ एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि यहाँ का खाजा खाकर देखना चाहिए। कहा देखेंगे, कोई हर्ज नहीं, चलो दुकान में खरीद लेंगे। कि उससे पहले दवा की दुकान में चलो। क्या क्यों? कह जरा भोजन ज्यादा कर लिया है तो पहले तो हाजमे की गोली लूंगा और फिर भूख लगेगी तब खाजा खाएंगे। मैंने कहा ये लिख लो तू कि तुम ऐसा कह रहे हो, क्या तुम हर बात में कुछ अपनी ऐसी आड़ दे हो, तो इसमें क्या है, क्या क्यों लिख लें, क्या हमने कौन सी बेजा बात कही। तो बेजा बात यह कही कि ये देखो दर ये चार आदमी खड़े हैं यहाँ उस खाजे की तरफ ताक रहे हैं, इनके मुंह से लाल लटक रही है, टपक रही है, और ये भूखे हैं, लेकिन ये सिर्फ देखते हैं, ये खा नहीं सकते, और तुम्हारा पेट भरा है, तुमको भूख लगने के लिए दवा लेनी पड़ती है। एक तरफ भूख है, उस भूख को शांत करने के लिए अन्न नहीं है, और दूसरी तरफ भूख का अभाव है, अन्न ही के ढेर है। इसे तुम भगवान के इंतजाम समझते हो? ये कोई सयाने इंसानों का इंतजाम है? तब मेरी बात उसकी समझ में आई। उसने कहा तुम ठीक कहते हो। तो आज इस दुनिया में जिसके जिसकी अलमारी में सैकड़ों बोतलें दवा की हैं, उसके यहां बीमारी नहीं है, लेकिन जिस गरीब के यहां बीमारी है उसको दवा नहीं मिलती है। ये क्यों होता है? चीज जो खरीद सकता है उसी को मिलती है। मित्रों, इसका नाम है पूंजीवाद। खरीदने वाले को ही चीज मिलती है, यही पूंजीवाद है। जो खरीद नहीं सकता वो मर जाएगा, दवा नहीं मिलेगी, मर जाएगा, अन्न नहीं मिलेगा। ये जो इंतजाम है इसे शैतान का इंतजाम कह लीजिए या भगवान का इंतजाम नहीं। तो क्रांति क्या कहती है, चाहे मार्क्स की हो चाहे और किसी की, चीज उसको मिले जिसकी जिसको जरूरत है, उसको नहीं जो जो खरीद सकता है। अब इसको एक्सचेंज वैल्यू कहां रही? जिस चीज के बदले में कुछ मिले वो संपत्ति, ये अर्थशास्त्र कहां रहा? ये काफूर हो गया। जरूरत पूरी हुई, बस चीज का उपयोग हो गया। आज का अर्थशास्त्र क्या कहता है? परचेसिंग पावर, खरीदने की शक्ति जिसे हो उसे चीज मिले, लेकिन जिसमें खरीदने की शक्ति ना हो वो क्या करे? चीज अगर मिलना, चीज का मिलना खरीदने की शक्ति पर निर्भर होगा तो गरीबी कभी नष्ट नहीं हो सकेगी। गरीबी और अमीरी बरकरार रहेंगी जैसे आज है। परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति बंटवारे का आधार नहीं होना चाहिए। बंटवारा जरूरत के मुताबिक होगा, बंटवारा खरीदने की शक्ति के मुताबिक नहीं। और आज करना पड़ता है, एक आदमी सारा पेट्रोल बाजार का अगर खरीद सकता है, सारी चीनी अगर खरीद सकता है तो नहीं, उसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि सबको मिलनी चाहिए। इस तरफ को जा रहा है सारा संसार, जाना पड़ेगा। बंटवारे का आधार खरीदने की शक्ति नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। बंटवारे का आधार जरूरत होगी। जो बीमार है उसे दवा मिले, जो भूखा है उसे अन्न मिले, जो नंगा है उसे कपड़ा मिले, वो खरीद सकता है या नहीं इसका सवाल ही नहीं। सवाल एक ही, वो मेहनत करता है या नहीं। समाज का कोई काम करता है कि नहीं। जो समाज का काम नहीं करेगा वो समाज में जी नहीं सकेगा। लेकिन बंटवारे की शक्ति का कोई सवाल नहीं। ये क्रांति है। गांव में कई बार ऐसा होता था कि देख लेते थे गांव के कुछ मुख्य आदमी कि कोई भूखा तो नहीं रह गया है, लेकिन वो दान होता था, जो भूखा रह गया है उसको खिला दो। ये दान नहीं, जहां जरूरत है वहां चीज पहुंचनी चाहिए। ये क्रांति का अर्थशास्त्र है। क्रांति का अर्थशास्त्र खरीदने वाले को चीज मिले नहीं, वितरण का आधार क्रय शक्ति नहीं, परचेजिंग पावर नहीं, वितरण का आधार जरूरत, उत्पादन का आधार काम परिश्रम, श्रम उत्पादन के लिए, लेकिन वितरण का आधार जरूरत। श्रम सब करेंगे, वितरण जरूरत के मुताबिक होगा। मार्क्स की यह क्रांति है, समाजवाद यही है, साम्यवाद यही है और गांधी जी यही है। क्रांति, दो क्रांतिकारी दो चीजें नहीं कह सकते, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां पहुंचना है वो मुकाम अलग अलग नहीं हो सकते। मकसद एक ही, कहां पहुंचना है कि हर आदमी को उसकी जरूरत की चीज मिले। शर्त एक ही कि वो परिश्रम करे, समाज के उपयोगी कोई परिश्रम, किसी तरह का परिश्रम करे जो समाज जिसको मान्य कर रखता है, ऐसा कोई परिश्रम करे। ये एक ही शर्त, अलाल अलाल नहीं जी सकेगा, आलसी नहीं जी सकेगा। तो इस अर्थशास्त्र के मुताबिक अगर रचना करनी हो तो क्या होगा, कदम आप सोच लीजिए। वो तो हर एक जगह की अपनी अपनी परिस्थिति पर कैसे कदम उठाएंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे, ये आप सोच लीजिए। लेकिन कीमत नहीं होगी, वस्तु कर कीमत की चिप्पी नहीं होगी। आज हर चीज पर कीमत की चिप्पी है, मनुष्य की विद्या पर है, मनुष्य के गुण पर है, मनुष्य के श्रम पर तो है ही। एक आदमी बिकता है, दूसरा खरीदता है, बिकने वाला हैवान है, खरीदने वाला शैतान है। इस अर्थशास्त्र में इंसान के लिए कोई जगह नहीं। हम क्या चाहते हैं, खरीदने वाले की शैतानियत, बिकने वाले की हैवानियत दोनों खत्म हो और दोनों की इंसानियत बढ़े, दोनों की इंसानियत का विकास हो, फूले फले। ये क्रांति है। अब इस तरफ को जाना है, मैं तो आपको किस तरफ को जाना है इतना ही बतला सकता हूं, रास्ता खोजना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में रास्ते बने बनाए नहीं होते, बना बनाया जीवन नकली है, जाली है, काउंटरफीट है। जीवन में रास्ते खोजने होते हैं, बनाने होते हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन, चार क्रांतियां हैं, हर एक ने अपना अपना रास्ता बनाया। हमको भी अपना रास्ता बनाना हो, खोजना हो तो मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है। मार्गदर्शक तो चौराहे चौराहे पर है, अपनी दुकान लगा कर बैठे हुए हैं, नुस्खे बेच रहे हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। पगडंडियां बनानी पड़ेंगी, रास्ते खोजने पड़ेंगे, तो उसको खोजिए। लेकिन किधर जाना है, कहाँ पहुंचना है, तो सूत्र यह है जो चीज जितनी अधिक जरूरत की हो वो उतनी सुलभ होनी चाहिए। सुलभ से मतलब आसानी से। तो हवा और पानी के बाद अन्न आता है। अन्न सबसे अधिक सुलभ होना चाहिए, मांग भी सबकी है। घनश्याम दास बिरला से लेकर स्टेशन के कुली तक और दशग्रंथी पंडित ब्राह्मण से लेकर भंगी तक सखी सबकी मांग एक है कि अन्न सस्ता हो, अन्न सस्ता हो। अभी इस चुनाव के बारे में मैंने सोचा सुना है कि इसका इस चुनाव में तो फैसला आखिर आखिर में हुआ और वो हुआ प्याज। प्याज महंगा हो गया तो जनता पार्टी गिर गई, इंदिरा जी आ गई। सबकी मांग एक ही है कि अन्न सस्ता हो। अब इसमें सवाल एक है, टेढ़ा सवाल है, जिसका जवाब आप सबको देना चाहिए। अगर अन्न सस्ता हो तो अन्न उपजाने वाले का क्या? कपड़ा बनाने वाला कहेगा कि मेरी मजदूरी बढ़नी चाहिए। लोहा बनाने वाला कहेगा मेरी मजदूरी बढ़नी चाहिए। इस कारखाने का मजदूर कहेगा काम के घंटे कम करो और मेरा वेतन बढ़ाओ। लेकिन ये सब मिलकर कहेंगे कि अन्न सस्ता हो। अगर अन्न सस्ता हो तो अन्न उपजाने वाले का क्या हो, वो क्या करे? आप सब लोग अपनी अपनी चीज महंगी बेचें और उसकी उपज सस्ते दामों में मांगे तो कैसा चित्र है? सारा समाज एक तरफ और ये अन्न उपजाने वाला किसान दूसरी तरफ, और वो फिर भी अन्न उपजाता है। इसका कारण यह है कि वो गधा है, सब उसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं और ऊपर से डंडा मारते हैं। इस सवाल का जवाब किसी ने खोजा नहीं था। एक पागल आदमी जो अर्थशास्त्री नहीं था इस देश में निकला, उसका नाम है विनोबा भावे। उसने कहा कि इसका जवाब तुम्हारा अर्थशास्त्र कभी देगा ही नहीं, दे नहीं सकता। मैं गया था इस भूदान के आंदोलन में गुजरात में, तो भरूच जिले में तमाकू होते हैं। मैंने कभी जमीन मांगी नहीं। वो एक आदमी आया, कहने लगा कि आप जमीन मांगते नहीं। मैं कह नहीं, मैं समझाता हूं, मांगता हूं नहीं, तो फिर भी आपको जमीन तो मिली है। मैंने कहा सूरत में एक आदमी आए, उन्होंने जबरदस्ती जमीन मुझे दी है 10 एकड़। तो कहे मेरी भी 1 एकड़ लिख लीजिए। मैं कहा आप इतने उत्साह से आए और उसकी 10 एकड़ आप एक दिखा रहे हैं 1 एकड़, कुछ तो दुख हो। कहा दुख है, हमारी 1 एकड़ उसके 10 एकड़ के बराबर। क्यों? वो सूरत का आदमी, वो तो ज्वार बोता है और मैं तमाकू बोता हूं। तो मैंने कहा वो बेवकूफ है, उसे भी मैं कहूंगा कि तुम भी तमाकू बो। तो कहने लगा फिर कैसे होगा, सभी तमाकू बोने लगेंगे तो क्या होगा? मैं कहा फाकेंगे तमाकू, क्या होगा? वो गधा है जो अन्न उपजाता है, वो क्यों उपजाए? तो हर आदमी, इसे कैश क्रॉप कहते हैं, बाजार में जिसकी कीमत आती है उसकी फसल लेना चाहता है। तो अन्न उपजाने वाला तो सबसे ज्यादा बेवकूफ होगा ना। इसलिए विनोबा ने कहा अन्न को सुलभ बनाने का एक ही रास्ता है, जमीन के दाम न हो, हल के दाम न हो, बैल के दाम न हो, और अन्न उपजाने की मेहनत के भी दाम न हो, तो उनका तो नुस्खा यह था कि प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग मेहनत करें खेत पर एक एक घंटा, अन्न उपजाने की मेहनत के कोई दाम नहीं। इस नुस्खे को न मानना हो तो कम से कम इतना होना चाहिए ना कि अन्न गांव के सब लोग उपजाएंगे, लेकिन अन्न उपजाने वाले जितने होंगे उनकी जरूरतें गांव पूरी करेगा। ये ग्राम स्वराज्य है जमीन पर और लोगों में, परिवार देश हमारा किसानों का है, और हमारे देश की समस्या है भूख। भूख का जवाब है अन्न, अन्न उपजाने का साधन है जमीन। तो वहां से हम शुरू करेंगे। विनोबा ने दो सूत्र दिए, पहला कहा इस गांव हमारे गांव में बेजमीन कोई नहीं होगा, लेकिन दूसरा ज्यादा महत्व का था ग्राम स्वराज की दृष्टि से, वो यह था हमारे गांव में जमीन मालिक कोई नहीं होगा, सिर्फ बेजमीन नहीं होगा। पहले कहा लोग बड़े खुश हुए, धन और धरती बटकर रहेगी। बटकर रहेगी इसका मतलब क्या है, छितर जाएगी, बिखर जाएगी, तब तो कोई मतलब नहीं हुआ। मालकियत को बिखेर देना विकेंद्रीकरण नहीं है, बंटवारा नहीं है दोस्त। संपत्ति को बिखेर देने का नाम बंटवारा नहीं है। ये हम लोगों ने गलत नारे लगा दिए, गांधी वाले भी शामिल हो गए, विकेंद्रीकरण करो विकेंद्रीकरण करो, बड़ा पैमाना नहीं छोटा पैमाना, ये सब शब्द बन जाते हैं। एक सज्जन अपने ससुराल में गया, जाकर बैठा, पत्नी को लेकर गया, एक चिट्ठी आई, अब वो चिट्ठी को देख रहा है और रो रहा है। तो उसकी पत्नी ने समझा कि जरूर कोई ऐसी खबर है जिसके कारण ये रो रहा है, तो पत्नी भी रोने लगी क्योंकि वो ये रो रहा है। उसकी माँ आई, वो दोनों को रोते देखा, कहा ये चिट्ठी तो कोई बड़ी बुरी चिट्ठी मालूम होती है, वो भी रोने लगी। कोहराम मच गया। अब पड़ोस की स्त्रियां भी आई सिंपथी में, वो भी रोने लगी। सब गांव इतना सब रोने का कोहराम जब मच गया, तो एक वहां से मेहमान आया उसी वक्त, उसने कहा बात क्या है, क्या हो गया जो आप सब लोग रो रहे हैं। तो माँ ने कहा कि ये रो रही थी इसलिए मैं रो रही हूं। बेटी ने कहा कि ये रो रहे थे इसलिए मैं रो रही थी। उनसे पूछा कि क्या बात थी, आप क्यों रोने लगे थे। ऐसा हुआ कि मैंने जो अंग्रेजी सीखी थी वो सिर्फ छोटी लिपि नहीं बड़ी लिपि सिर्फ मैं पढ़ना जानता था, ये छोटी लिपि में चिट्ठी आई इसलिए मैं रोने लगा। ये छोटी लिखावट मैं सीखा नहीं था। तो हमारा अर्थशास्त्र छोटी लिखावट नहीं सीखा, तो वो घबराता है। छोटी लिखावट और बड़ी लिखावट में फर्क इतना ही, शक्ल एक होगी, आशय एक होगा, सिर्फ ऊपर से देखने में भिन्न होगी। ये बड़ा पैमाना और छोटा पैमाना। अर्थशास्त्र में ये ऐसे शब्द चल जाते हैं राज्य शास्त्र में और अर्थशास्त्र में, और शास्त्री उन शब्दों का गुलाम हो जाता है। हमको क्या चाहिए, उत्पादन चाहिए किसके लिए, इंसान के लिए। कौन सा इंसान, हमारा पड़ोसी। कौन पड़ोसी है? हर इंसान हमारा पड़ोसी है। जिसको जरूरत है वो हमारा पड़ोसी है। हमारे गांव का है ही, लेकिन दुनिया के किसी कोने में, आज आप देखते हैं ना, बिहार में अकाल होता है, अमेरिका से चीजें आती हैं। सारा देश, सारी दुनिया हमारी पड़ोसी है। उत्पादन मुनाफे के लिए, बाजार के लिए, पूंजीवाद। कल मैंने सुना है ना ईश्वरदास वल्लभ दास की कहानी, उसे दुकान कहते हैं। पूंजीवाद उत्पादन बेचने के लिए, मुनाफे के लिए। उत्पादन उपभोग के लिए समाजवाद। अब इससे आगे हमको जाना है, जिसे ग्राम स्वराज कह लीजिए, चाहे जो नाम दे लीजिए, उत्पादन मनुष्य के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए। उसमें उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। प्रभावती जी ने अपने हाथ के कटे हुए सूत की एक धोती मुझे दी। अब मैं उसे अलमारी में रखता था, पहनता कभी एक आध दफा, तो लोग कहते थे कि सारी धोतियां पहनते हो, इसको क्यों नहीं पहनते, ये प्रभावती जी की दी हुई है। तो क्या हुआ? कहा ये तो इसमें दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एक दफा ग्वालियर आगरा कहीं मुझे याद नहीं है ठीक, लेकिन जूता खरीदना था, मैं गया। तो मेरे साथ दिक्कत यह है कि मुश्किल से मेरे पैर का जूता मिलता है। उसने 5 नंबर दिखाया, छोटा होता था, 6 नंबर दिखाया, बड़ा होता था। मैंने कहा भाई 5 नंबर का छोटा है, 6 नंबर का बड़ा है। कहा देखिए साहब, हमारी दुकान में हर मनुष्य के लिए हर नंबर के जूते हैं, आपका पैर ही कुछ गलत मत। बात तो सही थी, उसने सबके नाप के जूते बनाए थे, हमारे पैर का नाप ही नहीं था। तो राजनीति में क्या होता है, टोपी के नाप का सिर बनाना पड़ता है। और आज दुनिया में क्या होता है, वस्तु के नाप की चीज अपना शरीर बनाना पड़ता है। ये कोई अर्थशास्त्र है? चीज बनाने वाला, चीज बरतने वाला, दोनों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का आदर करेंगे। आज क्या है, बनाने वाला जूता नहीं पहन सकता, बरतने वाला 50 जूते खरीदता है 100-100 रुपया के। शान खरीदने वाले की है, बनाने वाले की कुछ नहीं। यही कारण है कि जो बनाने वाला है आज सबसे बीच पिछड़ गया है, सबसे निचला नीचे का आदमी है, सबसे दलित है, सबसे शोषित है। जिसके हाथ में औजार ही औजार हैं, उसकी कोई शान नहीं। और बगैर औजार के न हथियार बनता है, न थैली बनती है, न तिजोरी बनती है, न कुर्सी बनती है। साहूकार, सरकार, सिपाही, सबको बनाने वाला मोहताज, और इसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। क्रांति कद्र बनाने वाले की होगी, उसकी होगी जिसके हाथ में औजार है। तलवार तलवार को नहीं बना सकती, कुर्सी कुर्सी को नहीं बना सकती, थैली थैली को नहीं बना सकती। सबको बनाने वाला ये औजार वाला है, असल में ये विधाता है। लेकिन यही सबसे पिछड़ा हुआ दलित शोषित है। ये अर्थशास्त्र शैतान का अर्थशास्त्र, गलत अर्थशास्त्र है, इसको बदलना है। भुलावे मत पड़िए, छोटा पैमाना बढ़िया बड़ा पैमाना ये सब बातें हैं। पकड़ की चीज कौन सी है? क्या औजार वाले की शान बढ़ रही है? क्या बनाने वाले का रुतबा, उसकी वक्त समाज में बढ़ रही है? यह कसौटी की चीज है, बाकी सारी चीजें किसी काम की नहीं, वो अर्थशास्त्र है ही नहीं। अन्न उपजाने वाला किसान, चीजें बनाने वाला कारीगर, इनकी शान समाज में होनी चाहिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, सर ऊंचा, ये अर्थशास्त्र है, ये परिवार है, ग्राम परिवार कह लीजिए, शहर परिवार कह लीजिए। अब खत्म करने से पहले थोड़ी बात शहर की कह दूं। चुटपन में एक कविता हमारी थी कि भगवान ने देहात बनाया, गांव बनाया, और मनुष्य ने शहर बनाया। तो भगवान ने बनाया गांव, इतना तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, रास्ते टेढ़े मेढ़े, न सफाई है, न मकान किसी किस्म के हैं, कुछ है ही नहीं वहां। तो जैसे भगवान ने ही बनाया हो ऐसे ही है, कोई मनुष्य की कला वहां दिखाई नहीं देती, जैसे अपने आप धरती से उगाया हो। ऐसे सारे गांव हैं, मुझे गांव से बड़ा प्रेम है, लेकिन मन में ही है, वो कहीं को पढ़ाने के लिए नहीं जाता हूं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती, वहां कुछ है ही नहीं रहने लायक। और लोग कहते हैं कि गांव का आदमी बड़ा साधु होता है, मेरा भी पहले विश्वास था, लेकिन मेरे मामा का भी गांव ही था और ससुराल भी गांव ही में थी। वहां के आदमी जब जब हमारे शहर में आते थे तो पहला काम बाजार में जाते थे और सिनेमा देखते थे। तो मैं समझ गया कि गांव वाले भूखे हैं, ये कोई भले आदमी नहीं है, सिर्फ इनको मौका नहीं मिलता और शहर वालों को मौका मिलता है, इतना ही फर्क है। वैसा इनमें फर्क कोई ज्यादा नहीं है, जहां इनको मौका मिलता है वहां ये वही झूठ करते हैं, मक्कारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये भी अपनी पत्नियों को पीटते हैं, सब करते हैं। तो गांव के नक्शे को अगर बदलना है तो शहर की नकल नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही मुझे कहना है। शहर शैतान का है और गांव भगवान का, ये मैं नहीं मानता। आज का गांव भी शैतान का ही, लेकिन शहर की नकल न करें। क्यों? शहर में तीन चीजें हैं, बाजार है, अनुत्पादक व्यवसाय है और समाज विरोधी व्यवसाय है, इनका मिलकर शहर होता है। बाजार, ये सिनेमा वगैरह सब बाजार है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे बाजार ही हैं, हर चीज बिकती है। हमारी मौसी मुझसे कहा करती थी, बॉम्बे उसको दिखाने ले गया, कहने गया अरे भाई, अरे बेटा, बंबई में पैसा हो तो हर चीज मिलती है, माँ बाप छोड़कर कुछ भी तुम यहां खरीद सकते हो। तो शहर में पैसा हो तो हर चीज मिलती है, भगवान भी मिल जाते हैं। तो पहली चीज वहां बाजार है। मैं भी शहर जाता हूं किसी गांव में तो बाजार पहले घूमने जाना चाहता हूं, क्योंकि वो म्यूजियम ही है। यहाँ गांव के भी आपने देखा होगा कि बन ठंड कर सारी स्त्रियां हफ्ते के बाजार में जाती हैं। बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर आदमी आदमी को देखता है। तो शहर में बाजार मुख्य चीज है। दूसरे अनुत्पादक व्यवसाय, जितने रोजगार शहर में हैं उनमें से उत्पादक व्यवसाय एक भी नहीं, सारे व्यवसाय दलाली के हैं। शहर में कोई चीज बनती नहीं, जहां कारखाने के शहर है उनको छोड़ दीजिए, वो शहर अलग तरह के, लेकिन जिन्हें हम मामूली शहर कहते हैं यहां कुछ नहीं बनता, अन्न नहीं उपजता, कोई चीज नहीं बनती, सिर्फ चीज का बाजार होता है। तो शहर में जितने व्यवसाय हैं सारे दलाली के। अब दलाल किसे कहते हैं, शब्द आ जाता है तो समझा देता हूं। दलाल होता है बिचौलिया, जो आदमी को आदमी से मिलने नहीं देता, भगवान और भक्त को जो नहीं मिलने देता, उस दलाल का नाम है पुरोहित। उसका एक ही धंधा कि भगवान और भक्त को नजदीक आने दे, वो पंडागिरी करेगा। बनाने वाले को और बरतने वाले को जो मिलने नहीं देता, वो बाजार में दलाली करता है, वो बाजार का दलाल। और एक नागरिक को दूसरे नागरिक से जो मिलने नहीं देता, उस दलाल का नाम है नेता, वो पॉलिटिशियन। तो शहर में ये तीन दलाल तो हैं ही, सारे व्यवसाय दलाली के हैं, उत्पादक एक भी नहीं। और कुछ व्यवसाय, कुछ धंधे समाज विरोधी हैं, जैसे वकील है, डॉक्टर है, जो मेरा बेटा भी वकील है और डॉक्टर तो हमारे घर में बहुत हैं। तो पहले मेरे चाचा गए प्रैक्टिस शुरू करने, तो एक ऐसा गांव खोजा जहां बहुत बीमारियां थी। मैं कहा ये क्या गांव आपने खोजा है, तो हमारे रहने लायक नहीं है। कहा कि और कौन सा गांव खोजता, जहां बीमारी ज्यादा होती है वहीं तो प्रैक्टिस चलेगी, जहां बीमारी नहीं होती उस गांव में जाकर के करूंगा क्या, दवाखाना खाली रहेगा। यहां हर साल कॉलरा होता है, जा होता है, तो ये गांव तो सबसे अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। कोई बीमार ना हो तो डॉक्टर का रोजगार न चले, और कोई झगड़ा ना करे तो वकील का न चले। अब एक दूसरों के झगड़ों पर जीता है, दूसरा दूसरों की बीमारियों पर जीता है। अब मुझे बतलाइए इससे ज्यादा कोई समाज द्रोह हो सकता है। अब उनकी कदर चाहे जितनी हो, मैं कलकत्ते में बीमार पड़ा था तो आपस में बात करने लगे हमारे कार्यकर्ता कि किस डॉक्टर को बुलाएं, 16 रुपए वाले, 32 वाले, 34 वाले, 64 वाले या 128 वाले। तो मैं हैरान रह गया कि क्या बात है, करने ऐसे डॉक्टरों के भाव हैं। मामूली डॉक्टर 16 रुपए, उससे बढ़िया हो तो 32 हो, और विधान चंद्र राय को ही बुलाना हो तो 128 रुपये। तो अब ये डॉक्टर, यानी बीमारी जितनी भयानक होगी फीस उतनी अधिक होगी। तो ये तो मनुष्यों के जीवन के साथ खेलता है, और वकील उनकी संपत्ति के साथ खेलता है। एक झगड़े पर जीता है, दूसरा बीमारी पर जीता है, और इन सब का मिलाकर शहर। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि गांव इन व्यवसायों से बचे, गांव में इनका प्रवेश कम से कम, आज भी कम है और भी कम हो। डॉक्टर, वकील और अनुत्पादक कम से कम रहे, फिर वो प्रोफेसर हो, मास्टर हो, पंडित हो, पुजारी हो, कोई भी। ये चित्र है, जिस चित्र को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। पूरा चित्र तो एक भाषण में रखा नहीं जा सकता, एक दो बातें एक 5 मिनट में कह दूं। पहली चीज, उत्पादन में मनुष्य की शक्ति का उपयोग होना चाहिए, उत्पादन में मनुष्य का विकास हो। विकास से मतलब उसकी शक्ति बढ़े, उसका गुण बढ़े, उसकी कला बढ़े। मनुष्य की शक्ति, गुण और कला का विकास उत्पादन की प्रक्रिया में से हो, पहली चीज। फिर उसे बड़ा पैमाना कह लीजिए, छोटा पैमाना कह लीजिए, बड़े पैमाने पर हो सके तो बड़े पैमाने पर कीजिए, छोटे पैमाने पर हो सके तो छोटे पैमाने पर कीजिए। कोई मेरी इसमें कोई आग्रह नहीं। दूसरी चीज, मनुष्य के साथ साथ जो पशु मनुष्य के जीवन में आ गए हैं उनकी भी कला, शक्ति और गुण का विकास होना चाहिए।